الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بٹھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر, اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے. جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں, اور اللہ مددگار تھا ان کا, اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں مسلمان. بزرگان محترم, گزشتہ آیات میں اہل ایمان سے مسلمانوں سے ایک اہم بات کہی گئی. اللہ نے فرمایا کہ اپنے راز کی بات ایسے لوگوں سے نہ کہیں جو تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے اپنے مذہب کے نہیں ہیں. اپنی راز کی باتیں اپنے ہی ہم مذہب لوگوں سے کہنی چاہیے, خصوصاً جنگ کے مواقع کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو کسی غیر مسلم سے نہ کہا جائے. اس لیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے, کوتاہی نہیں کرتے, اور ان کے دلوں میں دشمنی اتنی بھری ہوئی ہے کہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. اور جو باتیں اپنے دلوں میں دشمنی کی چھپا رکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. پھر آخر آیت میں اللہ نے یہ بات بتائی, ان تمسسکم حسنتن تسوہم, اگر تمہیں کوئی بھلائی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے, اور اگر تم کو کوئی پریشانی اور برائی پہنچتی ہے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے. یہ حال ہے ان کا کہ تم جن کو اپنا دوست سمجھتے ہو, جن سے محبت رکھتے ہو, تمہارے بارے میں ان کا ایسا خیال ہے. اس لیے کبھی دوسرے مذہب والوں سے اپنی راز کی باتیں نہ کہی جائیں, اور جنگ کے موقع پر خاص طور پر کوئی بات نہ کہی جائے. اس سے نقصان خود مسلمانوں کا ہوگا. جو آخر آیت میں بات کہی گئی, اگر تمہیں کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے ان کو وہ خوشی بری لگتی ہے, اور کوئی तुम्हें मुसीबत पहुंचती है तो उससे वो खुश होते हैं। इस पर अल्लाह ने यहां मिसालें दी हैं कि एक मिसाल ग़ज़वे उहुद की दी है। ग़ज़वे उहुद में मुसलमानों को तकलीफ पहुंची, मुसीबत पहुंची तो वो लोग बहुत खुश हुए। फिर आगे चलकर अल्लाह ने ग़ज़वे बद्र की मिसाल दी। ग़ज़वे बद्र में मुसलमानों को फतह हासिल हुई, बड़ी खुशी हासिल हुई, इससे उनको सख्त तकलीफ पहुंची। अल्लाह ताला हर एक की मिसाल दे रहे हैं और सही वाकियात मिसाल के जरिए से समझा रहे हैं। लिहाजा अपनी रास की बातें और जंग के मौके पर जो रास की चीजें हैं, खास तौर पर वो दुश्मनों के सामने ना कही जाएं। फरमाया وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے صبح کے وقت۔ آپ مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے لڑنے کی جگہوں پر، لڑائی کے ٹھکانوں پر۔ अल्लाह खूब सुनते हैं, खूब जानते हैं। आप निकले अपने घर वालों से। ग़ज़वे उहुद को कुछ तफसील से समझना होगा, फिर ये बात समझ में आएगी। ग़ज़वे बद्र सन 2 हिजरी में 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ है और मुसलमान मशहूर कौल के मुताबिक सिर्फ 313 थे और उधर काफिर 1000 थे। और मुसलमानों के पास जो असल जंग के सामान हैं, घोड़ा, तलवार वगैरह, वो खुद इतने कम थे कि सिर्फ 8 तलवारें थीं, जंगी सामान भी नहीं। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की। ये वाकया 2 आयत के बाद अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। जब सन 2 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को ज़बरदस्त फतह हुई तो काफिरों को बहुत परेशानी हुई, बड़ी ज़िल्लत और शर्मनाक शिकस्त हुई। जब उनको शिकस्त हुई, काफिरों को, तो यहूद को भी बहुत बेचैनी हुई और वो अपने दिल दिल में बहुत परेशान हो गए। उनका दिल भी दुखने लगा। अब उन्होंने कसमें खाई, जब तक बद्र का मुकाबला नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ग़ज़वे बद्र में काफिरों के 70 सरदार मारे गए, बड़े लोग, और 70 कैद हो गए। कितनी बड़ी ज़िल्लत थी। मुसलमानों से 3 गुना उनकी फौज ज्यादा थी और हर एक के पास हथियारात थे। इधर सिर्फ 8 तलवारें थी 313 के पास, उधर एक एक के पास कई कई हथियार थे। जब इतनी तैयारी के बावजूद जबरदस्त शिकस्त हुई तो उन्हें बड़ी शर्मनाक और जिल्लतनाक शिकस्त महसूस हुई तो उन्होंने बदला लेने की कसम खाई और तैयारी शुरू कर दी और बहुत गजब की तैयारी की। मुल्क शाम से तिजारती काफिला बहुत सा नफा लेकर मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा था, बहुत नफा हुआ था। अब ऐलान कर दिया गया सारे मक्का वालों में कि जितना नफा हुआ है सभी अहले मक्का वो सब इस जंग में लगा दें। तो सबने बात मानी और मक्का वाले बखुशी अपना नफा वापस लाकर दे रहे थे। बड़ी जबरदस्त तैयारी हुई और 3,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज तैयार हुई, लश्कर तैयार हुआ और बहुत दनदनाते हुए, यहां तक के साथ में उनकी औरतें भी आई कि अगर ये लोग कमजोर पड़ेंगे तो अशआर पढ़ पढ़कर उनको हिम्मत दिलाएंगे और उनको हौसला देंगे ताकि मैदान जंग से भाग कर ना आए। तो बहुत सी औरतें साथ हो गई। जब ये लोग मदीना के करीब पहुंच गए उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा किया और मशवरा लिया। खुद अल्लाह के नबी की राय ये थी कि मदीने से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मदीने में रहकर ही लड़ेंगे। और अजीब इत्तेफाक, मुनाफिकों का जो सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबैय इब्ने सलूल, उसकी राय भी वही थी जो अल्लाह के नबी की थी। उसने भी वही राय दी कि मदीना से बाहर नहीं निकलेंगे, मदीने में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बहुत से नौजवान जो बद्र में शरीक नहीं हुए थे, उनको बहुत तमन्ना थी, शहादत का शौक था कि एक अच्छा मौका हाथ आया है, लिहाजा मदीने से बाहर जाकर लड़ेंगे और पूरी तरह से तैयारी करके दुश्मन पर हमला करेंगे। और असल शौक शहादत का था। अब इत्तेफाक से अक्सर राय इधर ही आ गई कि मदीने से बाहर जाकर लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ठीक है फरमाकर आप अंदर तशरीफ ले गए और खुद जो जंगी लिबास है जिसे जिराह कहते हैं, जिराह पहनकर हथियारात अपने जिस्म से बांधकर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। अब इधर सहाबा को परेशानी हुई कि हमसे गलती हो गई, अल्लाह के नबी की राय से हटकर अलग राय नहीं देनी चाहिए थी। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ लाए तो अब आजिजी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर आपका मंशा नहीं है तो फिर हम आपके साथ मदीने में रहकर ही लड़ाई लड़ेंगे। आपकी राय हमारी राय है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी जब जंगी लिबास पहन लेता है तो फिर वापस नहीं होता है, कि जब जंगी लिबास पहनकर घर से निकल जाता है फिर वापस घर नहीं जाता है। नबी में गैर नबी में यह फर्क है। गैर नबी के लिए तो जायज है लेकिन नबी के लिए दुरुस्त नहीं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं नबी में और गैर नबी में फर्क है, उनमें से एक बात यह है। अब बाहर जाने के इरादे से जंगी लिबास हमने पहन लिया, अब फिर यहीं रहना है तो अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन नबी की ये शान नहीं होती। आप अलैहिस्सलाम निकले तो सहाबा आपके साथ निकले और 1,000 अफराद फौज में शामिल हुए। इस मर्तबा भी काफिरों की तैदाद 3 गुना थी, वो 3,000 थी, 1,000 थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने से निकलते हैं शव्वाल की 7 तारीख को और सन 3 हिजरी को, तकरीबन 1 साल 1 महीने के बाद गज़वे बद्र के, 1 साल 1 माह के बाद गज़वे उहद पेश आता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा निकलते हैं और एक मकाम पर पहुंचते हैं। وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگی ترتیب دیتے ہیں، جھنڈا دیتے ہیں مصعب بن عمیر کو، اور ایک اور صحابی کو ایک لشکر کا حصہ بناتے ہیں مہاجرین کا، تم سپہ سالار رہو گے، انصار کے تم رہو گے، حضرت آپ کے چچا حضرت حمزہ کو ایک لشکر کا ایک حصے کا امیر بناتے ہیں، ترتیب دے کر پھر آگے نکلتے ہیں مدینہ المنورہ سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ پہنچتے ہیں میدان احد کے پاس، اور احد پہاڑ تو مشہور ہے مدینہ المنورہ کا، آپ وہاں پہلے پہنچتے ہیں، سامنے مدینہ شہر کو رکھتے ہیں اور پیچھے احد پہاڑ کو، دائیں طرف لشکر کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، بائیں طرف ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، اب سامنے سے دشمنوں کا حملہ ہو نہیں سکتا، ہر طرف سے حفاظت کرتے ہیں، یہ چھوٹی سی پہاڑی احد پہاڑ کے دامن میں ہوتی ہے اور اس کی اونچائی بہت کم ہوتی ہے، ادھر سے خدشہ ہوتا ہے کہ کافر لوگ ادھر سے حملہ کر دیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس حصہ پر مقرر کرتے ہیں اور 50 تیر انداز ان کے ساتھ دیتے ہیں اور تاکید کے ساتھ کہتے ہیں ہماری فتح ہو جائے اور دشمن ہار جائیں جب بھی جگہ نہ چھوڑنا، ہم ہار جائیں دشمن غالب ہو جائیں جب بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا، پوری تاکید کر کے ایک مقام پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے آج کل جبل رومات کہتے ہیں، تیر اندازوں کا پہاڑ، وہاں پر ٹھہراتے ہیں، اب حملہ شروع ہوتا ہے، اور عربوں میں جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ پہلے ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی نکلتے تھے اور للکارتے تھے، پہلے ادھر سے کوئی نکلتا تو ادھر للکارتا تھا ہے کوئی میرا مقابل، یا اگر ادھر سے کوئی نکلتا تو ادھر سے للکارتا تھا، اس طرح سے وہاں سے ایک ایک کر کے سپہ سالار آتے گئے اور ادھر سے مسلمان گئے اور ان کا کام تمام کرتے گئے، اور انفرادی طور پر کافر لوگ غالب نہیں آئے، پھر ایک دم سے اجتماعی لڑائی ہوتی ہے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی تدبیر ہوتی ہے وہ اتنی شاندار، اتنی منظم، اتنی مرتب اور بہت ہی محفوظ ہوتی ہے کہ بہت کم وقت میں دشمن ہار جاتے ہیں، ابو سفیان آتے ہیں، خالد بن ولید اس وقت کافر رہتے ہیں، وہ بھی انہی کی طرف سے آتے ہیں، اور بڑے بڑے سورما سپہ سالار آتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں مسلمان اس قدر بھاری پڑتے ہیں کہ جو عورتیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے آئی ہوئی تھیں وہ خود بھاگنے لگتی ہیں، اب مسلمان فتح پا لیتے ہیں، اور جس مسلمان جہاں تھے مال غنیمت جمع کرنے لگتے ہیں، ایک انگریز مورخ تاریخ لکھنے والا لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی تدبیر کی اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، آج تو جنگ ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر کے اس کے اصول بنے ہوئے ہیں، لیکن اصول بنانے کی بنیاد سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے کہ جنگی تدبیر کیسے ہو سکتی ہے آپ سے پہلے کسی نے، اور ادھر عربوں کا حال یہ تھا कि कोई जंगी तदबीर नहीं। हां लोग बहुत थे, सामान बहुत थे, जोश और हिम्मत थी और इंतकाम बदला लेने का और गुस्सा उतारने का मौका था। इधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीजों को दूर करके पूरे होश और हवास के साथ आपने काम लिया, इसलिए कुछ ही देर में मुसलमान भारी पड़ गए। अब मुसलमान भारी हो गए और माल गनीमत हासिल करने लगे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अनु के साथ जो 50 तीर अंदाज थे उनमें से 40 लोग वहां से छोड़कर आ गए और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उनको बहुत समझाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीदन फरमाया था हम हार जाएं जब भी अपनी जगह न छोड़ना, हम फाते हो जाएं जब भी अपनी जगह न छोड़ना। लेकिन उन लोगों ने जवाब देना शुरू किया अल्लाह के नबी का मंशा तुम लोग नहीं समझे, आपका मंशा ये था कि मुसलमान गालिब आ जाएं, फतह पा लें, गालिब तो आ गए, अब अल्लाह के नबी का ये मंशा नहीं रहा, लिहाजा वो भी आकर माल गनीमत हासिल करने में लग गए। खालिद बिन वलीद ने दूर से देख लिया कि एक जगह ऐसी है जहां बहुत कम लोग हैं, यहां से हमला किया जा सकता है, तो चुपके से एक बड़ा लश्कर लेकर चक्कर काटते हुए उधर से आते हैं और एकदम से इन 10 अफराद पर हमला करते हैं। ये लोग पूरी तरह से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उधर सैकड़ों होते हैं, गालिब आते हैं और एकदम से मुसलमानों पर हमला कर देते हैं और ऐसा सख्त हमला होता है कि उस वक्त बगैर किसी उम्मीद के हर तरफ से हमला होने की वजह से मुसलमानों का होश जवाब दे चुका होता है और बहुत सारे मुसलमान सहाबा मैदान छोड़कर भाग निकलते हैं, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 11 अफराद रह जाते हैं, बाकी सब मैदान छोड़कर इधर उधर मुंतशिर हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में एक आवाज उठती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब ये आवाज उठती है तो उनके जो और होश व हवास कुछ बाकी थे वो भी खत्म हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी ही बाहयात नहीं रहे फिर हम क्यों यहां रहें, और बहुत परेशान होकर वो इधर उधर होते हैं। 11 सहाबा अल्लाह के नबी को घेर लेते हैं, उधर से सैकड़ों की तादाद में हमला करते हैं। बाज़े सहाबा ऐसी हिम्मत दिखाते हैं कि हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अल्लाह के नबी के सामने खड़े होकर आपकी तरफ आने वाला हर तीर अपने सीने पर लेते हैं और हजरत तलहा रजी अल्लाह वो आपके सामने ऐसे खड़े होते हैं कि उनका बदन जख्म से छूर छूर हो जाता है। ऐसे ही हजरत अनस इब्ने मालिक के चचा अनस इब्ने नजर आते हैं, वो लोग भाग रहे होते हैं, वो इत्तिफाक से गज़वे बद्र में शरीक नहीं हुए होते हैं, उनको तमन्ना रहती है कि कोई और गज़वा होता मैं भी उसमें हिस्सा लेता। वो उधर से आ रहे होते हैं, हजरत साद से मुलाकात होती है, वो कहते साद किधर जा रहे हो, मुझे तो उहद के पीछे से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये कहकर वो घुसते हैं और मर्दाना वार मुकाबला करते हैं हत्ता कि वो शहीद हो जाते हैं। अब इतने में लोगों को मालूम होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात हैं और एक एक करके 100-100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में काफिर लोग अल्लाह के नबी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन ये 10-11 अफराद ऐसी हिम्मत से मुकाबला करते हैं कि अल्लाह के नबी तक पहुंचने नहीं देते, फिर भी अल्लाह के नबी के दांत शहीद होते हैं, दो दांत ऊपर के आपके टूट जाते हैं। खवत जो लोहे की टोपी आप पहने हुए होते हैं उसके अंदर जो कीलें गिरहें होती हैं वो जाकर आपकी पेशानी में नीचे गहराई तक छुप जाती है, अंदर तक चली जाती हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। ये जमात आती है काफिरों की, आप कहते हैं कौन है जो इनका मुकाबला करे, तो दो सहाबी खड़े होते हैं, एक तरफ हजरत तलहा, दूसरे तरफ एक और अंसारी। आप अंसारी को आगे भेजते हैं, हजरत तलहा को कुछ नहीं कहते, वो जाते हैं मुकाबला करते हैं, शहीद होते हैं। फिर एक जमात आती है, आप कहते हैं कौन है जो इसका मुकाबला करे इस जत्थे का, तो फिर हजरत तलहा खड़े होते हैं, एक और सहाबी खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी तलहा को कुछ नहीं कहते, उनसे कहते हैं तुम जाओ। सात अफराद को एक बात दीगरे भेजते हैं, वो सब के सब शहीद होते हैं। हजरत तलहा आपके सामने शहादत का शौक लिए खड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन्हें जाने की इजाजत नहीं देते हैं। अल्लाह के नबी को इस सिलसिले में वही आई हुई होती है, इसलिए आप खामोश रहते हैं। हत्ता के अब मुसलमानों को मालूम होता है अल्लाह के नबी बाहयात हैं, तो फिर सारे मुसलमान हर तरफ से जमा होकर हमला करते हैं, तो फिर काफिर लोग वहां से भागते हैं। और 70 सहाबा शहीद हुए थे बद्र में, या वहां 70 काफिर कत्ल हुए थे, उसका बदला लेकर उहुद में 70 सहाबा को शहीद करते हैं, और बद्र में 70 कैदी हो गए थे, लेकिन यहां अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैदी नहीं होता है। और सहाबा जख्मों से चूर चूर पड़े रहते हैं, उसी हालत में वो लश्कर वहां से चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उनको एहसास होता है कि हमने हिमाकत किया है कि मुसलमानों को जख्मी करके छोड़ आए, हमें तो चाहिए था कि हम उनका किस्सा ही खत्म कर देते और सारे ही मुसलमानों को कत्ल कर देते। फिर ये सोचकर उधर से तैयारी करते हैं, इधर अल्लाह के नबी को वही आती है, आप सहाबा में ऐलान करते हैं कौन है जो आगे हमारे साथ जाए, तो ये सुनते ही हजरत सहाबा तैयार हो जाते हैं, हालांकि न चल सकते थे और इतने जख्मी थे कि वो खुद दूसरों के मोहताज थे, लेकिन वो लब्बैक कहकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जंगी नक्शा होता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, जिसको तरतीब दिया था। यहां अल्लाह ताला ने बस उहुद के बारे में मुख्तसर नक्शा खींचा है, वइज़ गदौत मिन अहलिका, बस ये बताना है कि मुसलमानों को अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंचती है तो खुश होते हैं। ग़ज़वे उहुद की मिसाल देखो। अब यहां एक बात रह गई, उसको समझिए कि जब मुसलमानों का लश्कर उहुद के करीब आता है, तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ये कहकर अपने लोगों को वापस ले जाता है कि मेरी राय नहीं मानी गई और मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया गया, ये कहकर 300 को लेकर चला जाता है। उधर 3000 का लश्कर और इधर सिर्फ 700 रह जाते हैं, और उन 700 में भी दो बड़े कबीले हैं, एक बनू हारिसा एक बनू सलमा, ये बहुत जबरदस्त पहलवान बहादुर कबीला होते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल मुनाफिक को उसकी जमात को जाते हुए देखकर उनके दिलों में कुछ बुजदिली आती है, वो ये सोचते हैं कि हम भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि उनका ईमान सही था खालिस था, अल्लाह उनकी मदद करते हैं, उनके दिलों से बुजदिली दूर कर देते हैं। फिर वो हिम्मत के साथ लड़ते हैं और पहले मुसलमानों को फतह होती है, फिर शिकस्त होती है, फिर मुसलमानों को कुछ थोड़ी सी फतह होती है, यानी काफिर आकर मार तो जाते हैं लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने ये नक्शा यहां खींचा है, जैसा कि अभी बताया गया कि मुसलमानों को जब भी जिस तरह भी तकलीफ पहुंचेगी उनको खुशी होगी, तो ऐसे लोगों को अपना राज बताना और अपना महबूब समझना और ये समझना कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं बहुत बड़ी गलती और खाम ख्याली है, और ऐसा तस्वुर मुसलमानों को नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है और पहुंचाते रहेगा। फरमाते हैं वइज़ गदौत मिन अहलिका, और वो वक्त भी याद रखने के काबिल है जब आप निकले सुबह के वक्त अपने घर वालों से। देखिए कुरान करीम का एक अंदाज है, उसको समझिए। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तरतीब के साथ जिक्र किया है, बहुत कुछ तरतीब है और कुछ तवील किस्सा अल्लाह ने जिक्र किया, लेकिन कुरान करीम का मकसद कहीं भी पूरा किस्सा बयान करना नहीं होता है। कुरान उतना ही हिस्सा बयान करता है जिस हिस्से से तरबियत मुतालिक होती है, कोई हिकमत मुतालिक होती है, कोई अहम बात मुतालिक होती है, वही कुरान जिक्र करता है। ये किस्से कहानी की किताब नहीं है कि पूरी तफसील से बात बताई जाए। अल्लाह फरमाते हैं वही गदौत मिन अहलिका, और वो वक्त भी याद रखने के काबिल है जब आप निकले सुबह के वक्त। मालूम हुआ कि किसी अहम काम के लिए निकलना है तो सुबह के वक्त निकलना है, उस वक्त में अल्लाह ने बरकत रखी है और वो पूरा दिन इस्तेमाल में आता है। लिहाजा यहां से यह सबक दिया गया, जब आप निकले सुबह के वक्त मिन अहलिका अपने घर वालों से, यानी आप कहीं और जगह नहीं थे, अपने घर वालों में थे और अजवाजे मुतहरात के पास थे, वहां से निकले। इस जुमले से मालूम हुआ कि अगर अल्लाह का अल्लाह के रसूल का ऐलान हो जाए तो बड़ी सी बड़ी कुर्बानी दी जाएगी, हत्ता कि अहल उयाल को भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को छोड़कर निकले। تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, आप अहले ईमान को बिठा रहे थे किताल की, लड़ाई की जगहों पर। आप खुद बराहे रास्त लश्कर तरतीब दे रहे थे और बिठा रहे थे। जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहीं पढ़े नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब तरकीब अल्लाह ने आपको समझाई थी वही के जरिए से। लिहाजा नबी दुनिया में किसी का शागिर कभी नहीं होता है, नबी की तालीम बराह रास अल्लाह की तरफ से होती है। लिहाजा आप जंगी नक्शा बना रहे थे, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाले जानने वाले। यानी उस वक्त जब ये वाकया पेश आया, दोनों तरफ से जो जो बातें हुई सब बातें अल्लाह ने सुनी। अलीमुन, हालात को अल्लाह देख रहे थे, सब हालात से वाकिफ थे। इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफ़शला, वो वक्त भी याद रखने के काबिल है कि जब तुम में से दो जमात ने बुजदिली का इरादा किया। ये दो जमात एक बनू हारिसा के लोग थे, एक बनू सलमा के लोग थे। इन दोनों ने बुजदिली का इरादा किया और बुजदिली इसलिए पैदा हुई कि अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था वो सबके सामने से निकल कर गया, और उसका मकसद ये नहीं था कि मेरी बात नहीं मानी गई, वो तो एक हीला था। असल मकसद ये था कि जब आमने सामने हो जाएं तो उनके सामने से हम निकल जाएं, जब उनके सामने से निकल जाएंगे काफिरों की हिम्मत बढ़ जाएगी, मुसलमानों की हिम्मत पस्त हो जाएगी, मुसलमान जल्द से जल्द शिकस्त खा जाएंगे। ये नापाक इरादा था। अब लेकिन जाहिर सी बात है ऐन मौके पर एक बड़ी ताकत टूट जाए तो उसका असर होता ही है। लिहाजा दो कबीलों ने भी वापसी का इरादा किया, لیکن وہ سچے مسلمان تھے، اللہ نے ان کی مدد کی اور بزدلی سے اللہ نے ان کو بچا لیا. جبکہ تم میں سے دو جماعت نے بزدلی کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا کارساز ہے، ولی ہے اور اللہ ان کا مددگار تھا. کئی صحابہ نے یہ بات بتائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی انصاری صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا اس آیت کے شروع میں ہماری حقیقت بیان کی گئی کہ ہم نے بزدلی کی، لہذا ہم کو بہت دکھ ہوا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ ان کا مددگار اور ولی تھا. اس جملے سے ہماری تسلی ہو گئی، جو پہلے جملے سے دکھ ہو رہا تھا وہ دکھ یہاں آ کر ختم ہو گیا. اللہ نے حقیقت بیان کی تو اللہ نے یہ بھی تو کہہ دیا اللہ ہمارا دوست ہے، لہذا اس سے ہمیں خوشی ہوئی، واللہ ولیہما. ادھر کافروں کی طرف سے عورتیں آئی تھیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو مشہور اس زمانے میں سخت ترین عورت تھی اور مسلمانوں کی سخت دشمن تھی، اسی ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، بعد میں مسلمان ہوئی. اللہ کی حکمت اللہ جانتے ہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور وہ پکی سچی مسلمان صحابیہ ہوئی. تو کافر عورتیں اشعار پڑھ پڑھ کر ہمت دلا رہی تھی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہم بک اصول وفیک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ آپ کا نام لے کر حملہ کرتا ہوں اور آپ کے لیے قتال کرتا ہوں، آپ مجھے کافی ہیں، بہترین کام بنانے والے ہیں، بہترین کارساز ہیں. یہ دعا ہے. اس لیے یہاں سے بھی سبق ملتا ہے کہ ظاہری چیزوں سے مسلمان نجات نہیں پائیں گے، یعنی پوری تیاری ہو جائے، ظاہری پوری تیاری ہو کر اللہ پر بھروسہ کریں، یہی توکل ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ کوئی تیاری نہ ہو، کوئی تدبیر نہ ہو. اللہ کے نبی پہنچے، بہترین تدبیر کی اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا، یہی توکل ہے، یہی حقیقت ہے. جو لوگ دنیا سے ہٹ کر توکل کرنا چاہتے ہیں وہ توکل نہیں ہے، بلکہ وہ عین دنیا داری ہے. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اور بھروسہ کی حقیقت یہ ہے، تدبیر کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه.